कि एक बार देव सभा में चर्चा चली कि सबसे बढ़िया में बढ़िया मानव जात को उन्नत करने वाला कौन ऋषि है, कौन मुनि है, कौन पीर पैगंबर है, कौन जति है, कौन है वो जोगी, कौन है वो महापुरुष के समाज को, मानवीय जीवन को उन्नत करने में सक्षम है और सदा प्रसन्न रहता है। कई साधुओं का, संतों का, जतियों का, जोगियों का, ऋषियों का, मुनियों का नाम आया, लेकिन सर्वोपरि उन्नति के ऊंचे शिखर पर ले जाने वालों में भगवान कृष्ण का नाम सर्वोपरि साबित हुआ कि वो कभी अपना दिल दुखी नहीं होने देते। कैसी भी वस्तु हो, कैसी भी व्यक्ति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, बुरे से बुरा व्यक्ति, बुरे से बुरा पशु, बुरे से बुरा प्राणी, बुरे से बुरा अवस्था में भी कृष्ण अच्छाई ढूंढ लेते हैं और अच्छाई देखते हैं, इसलिए उनके अंतःकरण की अच्छाई सदाए थड़ थड़ थड़कती चिनकती भिनकती रहती है और लोग उनके संपर्क में आकर आनंदित हो जाते हैं, उल्लसित हो जाते हैं, उन्नत हो जाते हैं। मुझे ये बात बहुत जची और मैंने अपने जीवन में उतारी। जयराम जी की, श्री कृष्ण की पॉलिसी जीवन में उतारी जितनी उतार सका। देवता ने एक बार परीक्षा लेना चाहा तो कृष्ण गली से गुजर रहे हैं और ग्वाल बालों के साथ देवता कुत्ते का रूप लेकर वहां आकर पड़ा। कुत्ता ऐसा कि पूंछ कटी है, शरीर में घाव है, कीड़े खदबदा रहे हैं, बदबू मार पूरी गली में फैल रही है, मुंह फटा है, आंखें पटी है, मक्खियां बिन बिन आ रही है। ऐसी दुर्दशा में कुत्ता पड़ा है कि दूसरा रास्ता होता तो ग्वाल मित्र वहां से जाते ही नहीं, मजबूरी से वहां से गुजरे गली से नाक दबोच के। एक ग्वाले ने कह दिया कि कृष्ण ये कुत्ता कितना अभागा है, देखो कीड़े खदबदा रहे हैं, पूंछ कटी है, मुंह फटा है, आंख फटी है, कितना अभागा है, कितना उसका पाप कर्म होगा, घोर उसका फल भोग रहा है। कृष्ण ने कहा घोर पाप कर्म अभागा, ऐसा सोचकर अपना नाक सकोड़ कर दिल खराब करके तू अपना घाटा क्यों करता है, उसके दांत चमक रही है, उसके पुण्य का फल देकर अपने दिल की रक्षा कर, मौज में रहे तू। जयराम जी के, उसके दांत चमक रहे हैं, ये उसके पुण्य का फल है। जिंदगी ऐसी जी के जीवन चमक उठे और मरो तो ऐसे अटकल से, युक्ति से, आनंद से मरो कि मौत भी महक उठे। ऐसा जीवन जियो, जीवन चमक उठे और मरो तो ऐसे मरो कि मौत भी महक उठे। ये है भारतीय तत्व ज्ञान की आर्ट। जीवन जीना एक आर्ट है, कला है, कला हजूर। जीवन बोझा करके उसके नीचे दब मरने के लिए नहीं है, अथवा विलास के पीछे अंधी दौड़ लगाकर खोखला होने के लिए नहीं है। जीवन तो जीवनदाता के रस को, आनंद को, ज्ञान को और मुक्ति को उभारने के लिए और जीवनदाता से हाथ मिलाने के लिए जीवन है। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए, राह की दुश्वारियों पे मुस्कराना चाहिए। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। लेकिन यहां जब किसी के अखबारों में निंदा आती है तो फिर वन वे ट्रैफिक चलती है, सब निंदा ही करने लग जाते, और किसी की सराहना आती है तो फिर सराहना ही करने लग जाते। लेकिन सराहना वाले में भी कई वीक पॉइंट मिल सकती है और निंदा वाले में भी कोई कई श्रेष्ठ गुण छुपे हो सकते हैं, होते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, नारायण हरि, नारायण हरि। ऐसा कोई धरती पे आदमी नहीं जिसमें कोई सद्गुण न छुपे हो, ऐसा कोई धरती पे वनस्पति नहीं जिसमें औषध की कोई न कोई योग्यता न छुपी हो, और ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें मंत्र बनाने की व्यवस्था न हो, लेकिन संयोजक आयोजक दुर्लभ, संयोजक दुर्लभ, उसका उपयोग करने वाला दुर्लभ है। आपके बेटे बेटी में हजार दुर्गुण हो, लेकिन उसमें कोई न कोई सद्गुण होगा, उस सद्गुण को उभार कर उनके हौसले को बुलंद करो। क्या तू पान मसाला खाता है, तू झूठ बोलती है, तू नपास होती है, तू लोफंगा है, तू ऐसा है, ऐसा करने से न आप उनको उन्नत कर सकते हो, न आप उनको अपनी आज्ञा में चला सकते हो। आप अपना मन भी खराब करते हो, उनका भी पतन और गहरा करते हो, और आपके और उनके बीच आप एंटी विचार के बीज बोते हो। वे आपके बेटे होते हुए भी आपके दुश्मन का काम करेंगे। जयराम जी की। आपकी बेटियां, आपकी बहुएं, आपकी सासू, आपकी ननंद, ये सब आपके मित्र, हितेशी, स्नेही, ब्लड रिलेशन वाले होते हुए भी आपके साथ शत्रुता का व्यवहार करेंगे। और आपके पास जीवन जीने की टैक्ट हो तो आपके ब्लड रिलेशन वाले तो आपके रहेंगे, लेकिन ब्लड रिलेशन में नहीं है तो आपके जाति वाले भी आपकी जय जयकार करेंगे, और आपकी जाति से अलग जाति वाले भी आपकी जय जयकार करेंगे, और अलग से भी अलग पार्टी और विरोधी पार्टी वाले भी आपके सद्गुण को गाए बिना नहीं रहेंगे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री का विरोधी लोग भी सद्गुण की प्रशंसा किए बिना नहीं रहेंगे। भगवत आश्रय एक ऐसी चीज है, तटस्थता एक ऐसी सुंदर चीज है कि आपके सौंदर्य को निखारती है, और जगत का आश्रय एक ऐसा राग द्वेष है कि आपके सद्गुण दब जाते हैं। भोग का आश्रय आदमी को रागी, द्वेषी, अहंकारी, अशांत, कूढ़ा, कपटी, बेईमान बना देता है, और भगवान की भक्ति आदमी को प्रेमी, त्यागी, तपस्वी, सेवाभावी, नम्र, उल्सित, आनंदित और मुक्त आत्मा बना देती है। लेकिन भक्ति हो सच्चाई की, जयराम जी की। तो भगवान कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारतः सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परम तप। हे भरत वंश में उत्पन्न परम तप, इच्छा अर्थात राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद और मोह, द्वंद और मोह में संपूर्ण प्राणी संसार में मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को दुखों को प्राप्त हुए हैं। तो क्या करें कि जिसके जीवन में भगवत प्रेम होगा उसे विकारों में वैराग्य होगा, और जिसको भगवान में प्रेम नहीं होगा तो राग होगा और द्वेष होगा। भगवान में प्रेम होने से विकारों से वैराग्य होगा। अगर वो राग संसार में राग है वो भगवान में रख दो तो गोपियों की नाई तर जाओगे। अगर वैर या वैराग्य है तो शिशुपाल और कंस की नाई भगवान में धर दो तो तर जाओगे। लेकिन संसार में अगर तुम्हारा राग है, संसार की चीजें मिली तो भी आपको खोखला बनाएगी, और चीजें नहीं मिली तब भी आपको दुख देगी। जैसे कुत्ता रूठ गया तो पैर काटेगा और राजी हो गया तो मुंह चाटेगा। कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, रीझे तो पैर खीजे तो पैर काटे और रीझे तो मुंह चाटे। रिझ गया संसार तो मनी सेटिंग का टेंशन देगा। जयराम जी की। मनी सेटिंग का, भोग सेटिंग का, क्रेडिट सेटिंग का, ईगो सेटिंग का, ये सारा मुंह चाट चाट के टेंशन वाला कर देगा। कुत्ता मुंह चाटे तो मुंह कैसा बन जाता है, नाम मत लो बाबा। और कुत्ता पैर काटे तो क्या हाल होता है, दोनों तरफ से ये है। कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे और खीजे तो पैर काटे। न संसार से राग करो, न संसार से द्वेष करो, न घृणा करो, न प्रीति करो। ये तो चलता ही जा रहा है, बीतता ही जा रहा है। जैसे चौराहे पे तो हमारा मकान है तो किस कोई बारात आई तो तुम उसमें नाचने लगे, कोई मुर्दा पसार हुए तो तुम छाती कूटने लगे, तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा चौराहे पे। तुम तो उस ट्रैफिक को गुजरने दो भाई, देखते देखते सब गुजर रहा है, ऑटो रिक्शा भी गुजर रही है और वो ठेला भी गुजर रहा है, बाराती भी गुजर रहे, बाबा की गाड़ी भी गुजर रही है, बेटे की गाड़ी भी गुजर रही है, चारा वालों की भी गाड़ी गुजर रही है और बेचारा वालों की भी गाड़ी गुजर रही है, सब पासिंग थ्रू हो रहा है। तुम काहे को अटैचमेंट करके अपने चित्त को गंदा करो भैया। इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, अरे रोटी अपनी खानी और खोपड़ी दुनिया भर की। एक आदमी रेलवे स्टेशन पर गया, बोले साहब दिल्ली मेल कितने बजे जाता है? बोले 8 बजे। कितने बजे? कर्णावती कितने बजे जाती है? सुबह 5:30 बजे। शताब्दी कितने बजे जाती है? बोले 2:30 बजे। आगरा लोकल? बोले रात को 11 बजे। साहब तारंगा लोकल के लिए? बोले इतने बजे। और मेहसाणा लोकल? बोले इतने बजे। आपको कहाँ जाना है? बोले मेरे को तो केवल पटरियाँ पार करनी है। बोले धत तेरे की, पटरियाँ पार करनी है और सारी गाड़ियों का टेम खोपड़ी में भरता है। ऐसे ही तुम्हें भी तो ये संसार की पटरियाँ ही तो पार करनी है, इतना काहे यार खोपड़ी में भरो दुनिया भर को। बोले वर्ल्ड का नॉलेज होना चाहिए, होना चाहिए, थोड़ा बहुत रखो, लेकिन ये नॉलेज जिससे नॉलेज होता है उसका तो रखो, अपना तो पता नहीं। और दुनिया भर का ज्ञान ठासते जाते ठासते जाते ठासते जाते, प्री प्लानिंग है, ये है, वो रिसर्च है, वो रिसर्च है, वो रिसर्च है, और दूसरा प्रेसिडेंट आएगा उसकी खोपड़ी में दूसरी रिसर्च का महत्व आ जाएगा, तीसरा आएगा तीसरी का हो जाएगा। इंसान के चाहे अगर दुनिया चलती न तो कोई सीधे सज्जन आदमी को जीने नहीं देता, जयराम जी की, और सज्जनों के चाहे अगर दुनिया चलती तो कोई दुर्जन को जीने नहीं देता, जयराम जी की, हरामियों के चाहे अगर दुनिया चलती तो कोई अच्छे को नहीं रहने देता, और अच्छों के चाहे दुनिया चलती तो कोई बुरों को नहीं रहने देता। वो तो दुनिया तो चलती है, दुनिया के मालिक के चाहे उसको सब अपने लगते हैं, यही तो खेल है। कितना भी नेटवर्क करके रख ले अमेरिका का धरा रह जाएगा, जैसे मथुरा का जजमेंट अभी तक धरा रह गया। मथुरा में वृंदावन तो तुम गए होंगे, राम कृष्ण लीला होती है, कृष्ण लीला होती है तो उस किरण लीला करने वाली कंपनियां मंडल अलग अलग होते हैं, तो उनमें कंपटीशन भी होती है। तो एक मंडल ने भगवान कृष्ण को बाई और बंसी और दाई और निगाह और बाई और मुकुट ऐसा बांधा, दूसरे ने बोला इनको कृष्ण का श्रृंगार करने नहीं आता, ये तो बोगस है, श्रृंगार तो हम सही करते हैं। कृष्ण की बंसी बाई और निगाह भी बाई और मुकुट दाई और होना चाहिए। दोनों आपस में भिड़ गया कंपनी वाला और मुकदमा गया मथुरा की कोर्ट में। अंग्रेजों ने खूब चक्कर खिलाकर बाद में जजमेंट दिया, मुकुट नो लेफ्ट साइड नो राइट साइड, स्टेट हाईवे, एकदम सीधा मुकुट बांधना मंगता, ऑर्डर इज द ऑर्डर, लेकिन तेरा ऑर्डर अंग्रेज के बच्चे तेरी कोर्ट में धरा रह गया, मुकुट तो अभी भी भक्तों की भावना से ही बांधा जा रहा है और कृष्ण भक्तों की भावना से ही नाचे जा रहे हैं। फिर हरिद्वार में कुछ वैष्णव भक्त भिड़ गए, कुछ शैव भिड़ गए, जिनका मन भगवान में नहीं लगता तो थोड़ी थोड़ी बात में तू तुम में भिड़ जाते हैं। शैव बोलते हैं कि ये हरिद्वार है, हरिद्वार हरि का द्वार, हर का द्वार है, शंकर भगवान कैलाश में रहते हैं, इस जगह का नाम है हरिद्वार। वैष्णव ने कहा नहीं नहीं, ये तो आदि नारायण के चरणों से निकली है, शंकर के जटा से तो निकली है लेकिन भगवान नारायण के चरणों से निकली है गंगा, इसलिए ये हरिद्वार है। उन्होंने बोला चरणों से निकली तो क्या, धरती पे तो धरने वाले हमारे बम बम भोलानाथ है ना, काहे चरणों से निकली तो वहां निकली ना, यहां तो धरती पे जटाओं से निकली ना, तो फिर हर के जटाओं से निकली तो हरिद्वार बा, तुम कैसे कही तो हरिद्वार है ना। दूसरे ने कहा डंडेबाजी जिनकर हम मुकदमा जारी कर दे, सीधे हो जाएंगे बिटवा, मुकदमा दर्ज हो गया। जयराम जी की, मुकदमा दर्ज हुआ, शैव पंथी बोलते हैं कि ये हर द्वार है, हरि हर का द्वार है, शिव जी का द्वार। और वैष्णव बोलते हरिद्वार है। अंग्रेज न्यायाधीश ने न्याय दिया कि न हरिद्वार नो हर द्वार, यहां लोग हड्डी डालता, इस जगह का नाम हड्डी द्वार। अरे नेटवर्क वाले, तेरा हड्डी द्वार तेरी खोपड़ी में है, अभी भी हम हरिद्वार ही जाएंगे। हड्डी द्वार आज तक कोई हिंदू नहीं गया, जयराम जी बोलना पड़ेगा भैया। तो कभी भी इन नेटवर्कों से 200 साल पुराने क्या होगा, बापूजी उनके पास ये प्लानिंग, और हम लोग कैसे कैसे चलेगा। ऐसे चिंता ज्यादा मत करो, चिंतन करो, लेकिन उनके नेटवर्क में चिंता करके हम लोग डूब मरे नहीं, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले हाथ बहुत नजीक है और बहुत अपने वाले के हैं। बुढ़िया जा रही थी अपना सामान लेकर, कुछ बगल में थैला था, कुछ पीठ पे लादा था, एक गठरिया सिर पर भी थी। चलते चलते वो बुढ़िया थकी, एक घोड़े सवार गया कि बोले बेटा भैया ये मेरी एक गठरी तो उठा ले तेरे घोड़े पर, उसी गांव के बाहर तो खड़ा रहना, मैं आ जाती हूँ। बोले मैं खड़ा रहता, मैं कुछ फालतू आदमी हूँ, मेरे पास इतना समय है, तेरी गठरिया लेके खड़ा रहूंगा। घोड़ा भगा दिया, आगे गया, सोचा कि बुढ़िया थी, गठरिया में कुछ भी हो सकता है, बर्तन थे, हो सकता है चांदी के हों, और सचमुच में चांदी के बर्तन थे, कांसे के भी होंगे, चांदी के भी होंगे, और बूढ़ी पुराने जमाने की है, हो सकता है कुछ सोने के भी हों कुछ। उसने घोड़ा वापस किया, बोले लाओ बुढ़िया ले लेता। बोले भैया अब मेरा वो अंतर्यामी बोलता है कि गठरिया देने के लायक तू नहीं है, अब जो तू आया और ढंग से आया है, मैं नहीं देती, मेरा बचाने वाला मुझे सावधान करके बैठा है, तू चला जा भैया। अगर सचमुच में सेवा भावी होता तो पहले लेता, अब तेरे चेहरे और तेरी आंखों की खबर वो मेरे को भीतर बैठे बैठे दे रहा है। जय जय सियाराम। आपको भी कई खबरें मिलती है कि ये मेरे से कपट कर रहा है कि सच्चाई से बोल रहा है, नहीं मिलती खबरें? मिलती, भले राग द्वेष के कारण आप सुना अनसुना कर दो, उसकी खबर पर ध्यान न दो अलग बात है, लेकिन वो सतत खबर देता रहता है। सेठ जी बैठे हैं अपने ऑफिस में और पास के कमरे में लोलक वाली घड़ियाल चल रही, टक 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 टक, समझ गए ना, लोलक वाली घड़ियाल, कट 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 कट। सेठ जी का उसके प्रति ध्यान था, खट खट। एकाएक वो आवाज आना बंद हो गई। मुनिम जरा देखो आवाज, क्या घड़ियाल बंद हो गई क्या? मुनिम देख क्या, बोले सेठ जी आवाज तो आ रही है। तो बोले सुनाई क्यों नहीं पड़ती? बोले ये सड़क पे से जो बाजार बारात जा रही है ना, तो बारात के शोरगुल में वो सूक्ष्म खट कट 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 नहीं सुनाई पड़ती। ऐसे ही सोहम सोहम अनहद नाद चलता है, लेकिन ये दुनिया की बाजार के शोर में आपको सुनाई नहीं पड़ता। घड़ियाल तो उसकी चल ही रही है, ये घड़ियाल तो बंद हो सकती है? उस सच्चिदानंद की चेतन घड़ियाल कभी बंद नहीं होती। सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे, हाजरा हजूर जागंदी जोत, आद सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत। लेकिन इच्छा और द्वेष ने द्वंद ने क्या किया, जीव की वह अंतर चेतना का आवाज आनंद माधुर्य भुला दिया, और बाहर की उस बराती इंद्रियों देखने घूमने सूंघने की हाय हाय ने इसको हैरान कर दिया।